Merely? Can you clearly understand? श्रीराम भगवान के 34 खंड में नारद मुनि ने प्रचेतस को इस प्रकार की शिक्षा दी। प्रचेतस धरती में बड़े करके पुत्र थे और उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या का पालन किया था। तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि स्वाभाविक व्यक्ति तीन जन्म प्राप्त करता है। कितने जन्म? पहला जन्म है माता के घर से, ये जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य भी। अगले जन्म को कहा जाता है शोक्रा जन्म। शोक्रा का अर्थ है सीमेन कर्मीडिया। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें हरिनाम दीक्षा प्राप्त होती है। जैसे आज के इस कार्यक्रम में 10-11 साल हरिनाम दीक्षा दे रहे हैं। और ये दूसरा जन्म जो है इसको कहा जाता है सवित्र जन्म। तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमको ज्ञान की मंत्र प्राप्त होता है। और इस जन्म को कहा जाता है यज्ञ का जन्म। आज आप में से कई भक्त दूसरा जन्म प्राप्त करते हो या सवित्र जन्म, और कई तीसरा जन्म प्राप्त करते हो या यज्ञ का जन्म। इस कर्म संस्थान में हरिनाम दीक्षा जब की जाती है तो कम से कम 1.5 साल के लिए कोई 16 माला का जाप कर रहा हो, साथ में 4 नियमों का पालन कर रहा है और करने की जिम्मेदारी ले रहा है। 4 नियम क्या है? 4 नियम है वहां से न मछली नहीं खाना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार की नशे की चीज नहीं ग्रहण करना, चाय कॉफी पीने। और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम में आप रहो शास्त्र की शिक्षा के अनुसार और इंडिया से सीख लेते हैं। अगर हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो 4 नियम बन जाते हैं धरती के खंभे। जब हम इन 4 नियमों का पालन नहीं करते करते ये बन जाते हैं पाप के खंभे। इसमें संसार में अनेक नियम है, पर नियमों का जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। ये जो नियम दिए जाते हैं ये परम भगवान से आते हैं, गुरु परंपरा द्वारा आते हैं, ये कोई नए नियम नहीं है। और भक्तों से निवेदन किया जाता है कि रोज 16 माला का जाप करें और एकादशी और शुभ दिनों पर 25 माला का जाप करें। माला का जाप का लाभ हर स्थिति में है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे ये शराब का टेस्ट कृष्णा है तो प्रवचन ही इंस्पिरेशन हो गया, वो भी अध्यान प्रवृत्ति कर रहा है। और अगर आप इस हरिनाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो जो होना चाहिए भगवत प्रेम, फिर हमें जाप भी करना है और प्रारंभ से भी बचना है। बहुत मेहनत करें यदि शरण कितना तब उतना पाया कृष्ण पड़े से बनाना। हम अनेक जन्मों तक भगवान का नाम लेते हैं तो अगर हम अपने आप को 10 नामों का रूप में बनाएंगे तो यह हरिनाम का पूरा लाभ दिया है। तो 10 नामों का क्या है? करण नामों का अर्थ है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया है भगवान की सेवा में। तो इसे कहा जाता है पागल हाथी का अपराध। इसे कहा जाता है पागल हाथी का अपराध। चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया, अगर कोई पागल हाथी को आप सुंदर मुर्गी जब छोड़ दोगे तो क्या परिणाम होगा? तो कुछ तो नहीं, गो आउट एंड करना। अगर एक पागल हाथी तो आप सुंदर बगीचे में छोड़ दोगे तो सुंदर बगीचा तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति का जो लाभ है वो मिल जाता है। तो अनेक प्रकार के अपराध हैं, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, हरिनाम अपराध, हमें इन सब अपराधों से बचना है, हमें ईर्ष्या और द्वेष से बचना है। ये नहीं कि ईर्ष्या और द्वेष के कारण हम किसी निंदा करें, द्वेष न करें। चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को बड़ा भाषण किया है। अगर आप कोई लुक्स देखो तो प्रेम शब्द धार सकते हो, अपने भावों को प्रकट कर सकते हो, और ईर्ष्या द्वेष के कारण आलोचना करना, निंदा करना, इससे हमें बचना चाहिए। तो पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन समर्पण किया है इसलिए समाज के सेवा। दूसरा नाम अपराध है देवताओं को, देवताओं को परम आधार के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना। हम सब खास करके जिन्होंने हिंदू समाज में जन्म लिया है, चाहे भारत से हो या मॉरिशस, किसी देश में हो, किसी कोने में, हम सब पले हैं इस उपासन में कि सब भगवान एक ही है। और बात हमारा नाम री रोड श्री कृष्ण को सारे हमारा एक ही राष्ट्र बन जाते हैं। और जब आप इस्कॉन में आते हो और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते हो फिर आपको क्या उपदेश मिलता है? ईश्वर परमा कृष्ण ईश्वर है, प्रेम परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ नारायण कृष्ण। तो ये सोचना कि हम किसी की पूजा कर ले, सब एक ही बराबर है, सब एक ही है, ये एक महान अवतार है। तो देवता देवियां हैं ये परम भगवान के अधीन है, ना ही ये उनके समान है, ना ही उनसे स्वतंत्र है। तो ये सोचना कि देवता देवी सब परम भगवान के समान है ये महान अपराध है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं, मैं तो बचपन से देवताओं की पूजा करते आया हूँ, अभी मैं नहीं करूँगा तो मेरा अपराध अभी होगा? तो उसका अपराध नहीं होगा, क्योंकि देवता देवी जो है परम भगवान के अधीन है और उनकी इच्छा क्या है कि हम सब परम भगवान की सेना कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम देवता की पूजा नहीं करेंगे तो वो हमारे सूर्य बन जाते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो वो देखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और हमें पूरी श्रद्धा के साथ प्यार करना चाहिए, हमें पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तीसरा नाम अपराध है तो हमें किसी हालत में ये नहीं पूछना चाहिए कि हमें देवता की पूजा भी चोरी चोरी करनी चाहिए। ये नहीं कि भारत से हम वैष्णव बने और अंदर से हम देवता की पूजा करें, इससे हमें बचना है। और हमें किसी हालत में ये नहीं सोचना कि हम देवता की पूजा नहीं करेंगे तो वो हमारे नाश हो जाएंगे, पूरे कर जाएंगे। देवता जो है प्रसन्न होते हैं, वो देखते हैं कृष्ण भगवान की सेवा में हम मिले हो। इंद्र ब्रह्मा शिव जी सब भगवतों के दर्शन करने परम भगवान का प्रणाम करते हैं और स्वीकार करते हैं क्या कृष्णा तिरु भगवान प्रणाम। तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना। गुरु के आदेश का पालन नहीं करना तो गुरु को साधारण व्यक्ति समझना। गुरु भक्त से सलाह ले चुका हूं। शास्त्र में कहा गया है कि हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या है? वाच वेगम क्रोध वेगम जीव वेगम उदार वेगम, मन और इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। और गुरु की क्या इच्छा है? मैंने इस विषय पर फिनिक्स के मंदिर में लेक्चर दिया था, उसको सुनता है। तो गुरु की क्या इच्छा है कि शिष्य का आकर्षण बढ़े हरिनाम के प्रति, सेवा भाव के प्रति, ठाकुर जी के प्रति। तो गुरु का जो आदेश है वो हमें एक भावना से स्वीकार करना चाहिए, ये मानते हुए कि हम हैं मूर्त नंबर एक, गुरु जो है हमें भगवान का शुद्ध संदेश दे रहा है। और शास्त्र में कहा गया है पहले कदम में गुरु की शरण लो, दूसरे शरण में सेवा करो, तीसरे कदम पर दीक्षा लो, चौथे कदम पर पूछो यदि क्या जागरण चाहिए भगवत प्राप्ति सफलता प्राप्त करेंगे। और पांचवा अगर कुछ जानना भी पड़े तो क्या लो। अब डॉक्टर के पास जाते हो पूछते हो क्या परहेज रखोगे, डॉक्टर परहेज बोले आप फिर इसका पालन नहीं करोगे तो लाभ होगा कुछ लाभ नहीं। तो गुरु की इच्छा क्या है? क्या हमें भक्ति भावना बढ़े, हरिनाम के प्रति रुचि बढ़े, सेवा भाव के प्रति भाव बढ़े। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु का कर्तव्य है केवल वो हमारी खुशामद कर लें, हमारी तारीफ कर रहे, हमें कहें ओ यू आर सच अ नाइस डिवोटी, तो इतने बड़ा अच्छा प्रश्न। पापा जी कहते थे कई बार माई बिजनेस इज टू फाइंड योर फॉल्ट, मेरा काम है पापा जी कहते थे हमारे नुकसान को ढूंढना। तो गुरु की इच्छा रहती है कि शिष्य भक्ति में आगे बढ़े, हरिनाम के प्रति उसका आकर्षण बढ़े। और इसलिए हमें गुरु के संदेश, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, यह मानते हुए कि ये हमारी भलाई के लिए है। जिस प्रकार व्यास देव जी की शिक्षा जो है हमारी भलाई के लिए है, जो शुद्ध गुरु है, जो शुद्ध गुरु है वो भगवान के संदेश को श्रद्धालु प्रस्तुत करता है। भगवान के समाज के भाग्य बाबा जी के गुरु ने 1921 में हमें आदेश किया था, तो पढ़े लिखे हो ले जाओ चेत निर्माण पब्लिक संदेश को पश्चिम देश में। और बाबा जी ने 3 सालों तक संघर्ष किया और फिर अंत में ले गए गुरु जी की कृपा से महाप्रभु जी संदेश को सारे देश। तो हमें श्रद्धा के साथ गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और अगर हम गुरु के आदेश का पालन करके श्रद्धा के साथ तो फिर भगवान की कृपा से भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु की यही इच्छा है कि आप हरिनाम में आगे बढ़ो। तो गुरु को अपने आचरण के द्वारा धार्मिक शास्त्रों का संदेश प्रस्तुत करना, ये नहीं कि हम लोगों को बोले कुछ और कहें कुछ और, ये नहीं कि प्रभु के नियमों का पालन करो और स्वयं हम नियमों का पालन नहीं करें। गुरु है जो प्रीच माई एग्जाम्पल। चौथा, वैदिक शास्त्र की निंदा करना, तो ये सोचना कि वैदिक शास्त्रों का आज के आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं। पहला शास्त्र के संबंध आज दया प्रयोजन वैदिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र का जो संदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। और वैदिक शास्त्र का जो संदेश है मानव समाज के सुधार के लिए है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वैदिक शास्त्र का जो संदेश है ये पुराना हो गया या वैदिक शास्त्र का जो संदेश है इसका हम उपयोग नहीं कर सकते कभी भी। आज जमाना बहुत बदल गया है, हमें कोई नया शास्त्र से वैदिक शास्त्र का संदेश भगवान ने दिया था पहले हजारों हजारों साल पूर्व। तो हमें पूरा विश्वास रहना चाहिए कि वेदिक शास्त्र में जो संदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। मैंने और इस विषय को हम सनातन धर्म कहते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें दुख है, इसमें जमाना बहुत बदल गया है, हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं। हमें बनाया संदेश है श्रद्धा के साथ, हमें वैदिक शास्त्र के संदेश को स्वीकार करना चाहिए और हमें हमारे मन में कभी शंका नहीं आनी चाहिए कि वैदिक शास्त्र का संदेश किसी की कल्पना है। ऐसे सोचेंगे तो शास्त्र के संदेश में श्रद्धा करते रहेंगे। तो वैदिक शास्त्र की रचना की स्थिति स्वयं भगवान ही है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं। आगे ये सोचा कि हरे राम की जो महिमा है ये किसकी कल्पना है। शास्त्र में कहा गया है हरे राम हरे राम हरे राम एवं केवलम हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम, यही एक सरल माध्यम भगवत प्राप्ति के लिए। तो हरे राम के अलावा हमें और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। गो बैक टू गार्डन द होली नेम, वी डू नॉट नीड एनी अदर मंत्र फॉर गोइंग बैक टू गार्डन। तो ये सोचना कि हरे राम की जो महिमा है इतनी नहीं है और शायद हमें छोटी छोटी दूसरे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ये भी महान प्रताप है। लेकिन ज्यादा समय है तो सोलह के आप प्रत्येष्ट करते हैं और फिर मना भी करो, पर ये आवश्यक है कि आप ये स्वीकार करो कि हम परमवेदिक शास्त्र में संदेश है, सनातन है, इसके लिए पूरे मानव समाज के लिए। कभी कभी भारतीय हिंदू लोग भी वैदिक शास्त्र के संदेश में पूरी श्रद्धा नहीं प्राप्त करते। और ये मत सोचो कि हरि नाम की जो महिमा का वर्णन है दिस इज कल्पना, एग्जैजरेशन, इमेजिनेशन। हरि नाम अलोन इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग अस विद साइकल बोलता है। हरि नाम अक्षर उच्चारण से हमें जीवन की समाप्ति पर भगवान के धाम का हमारे में ये नहीं भाव होना चाहिए कि हरि नाम की जो महिमा है शास्त्र में ये बड़ा चरागण है, वास्तविकता में हरि नाम में इसकी शक्ति नहीं है। फिर हमें छठे नाम करना है क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन चैनल हो गए। हमें अपना भाव नहीं देना चाहिए हरि नाम को, ये हरिनाम द्वारा हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करके मेरे सेवा दो सेवा दो सेवा दो, ये है हमारे हरिनाम के द्वारा प्रार्थना। तो अगर हम ये सोचे कि ये किसकी कल्पना है और हम अपना भाव दे सकते हैं, ये महान चैतन्य महाप्रभु ने हमें शुद्ध भक्तियों का सिद्धांत किया है और हमारे परंपरा के जितने गुरु महात्माओं हुए हैं सब हमें यही संदेश देते आ रहे हैं। तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हरि नाम के जो महिमा है ये प्राइवी है और हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं है। और हमें हरि नाम के महामंत्र को अपना भावार्थ भी नहीं देना चाहिए। जब हरि नाम की जो महिमा है ना ही एक कल्पना है और ये हरि नाम के उच्चारण से आप क्या संदेश दे रहे हो, हे भगवान हमें क्या दो, सेवा दो सेवा दो सेवा दो। जितने ध्यान से आप माला के जाप करोगे उसी धीरे के साथ हरि नाम की कृपा हमें प्राप्त होगी। सातवां नाम प्राण है, हरि नाम के जप के बल पर क्या करना, पाप करना। प्रॉपर से This is the most serious of all offenses. Hari Naam to chant, commit sins and offend our chanting. तो इस अपराध का मतलब क्या है? हम ये सोचते हैं हमें हरिनाम दीक्षा मिल गई है, हम ये सोचते हैं हमें प्राण दीक्षा मिल गई है, अब हम स्वतंत्र हैं, अब हमें सब कुछ पता है, अब हम निर्णय करेंगे। तो ये महान अपराध बन जाता है। हमें विश्वास रहना चाहिए कि हरिनाम एक सरल साधन है धर्म प्राप्ति के लिए, और हरिनाम जो है वही अति धन, वही अति सुख का साधन। और उस दिन आपके मृत्यु में था वो बोर्ड देखा, जैकपॉट 25 मिलियन रुपीज, तो हम सोचते हैं जैकपॉट मिल जाए 25 मिलियन हम संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे कितनी भी सुविधा प्राप्त हो, अब भौतिक समाज में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये है सातवां लक्ष्य है। तो सातवां नाम उठा ले हरि नाम के जप के बल पर प्राप्त करना, ये सोचना कि अभी मैं दीक्षित हूं, दीक्षित हो गया, इतने सालों से मैं दीक्षित हूं, ब्राह्मण के में बन गया, सन्यासी बन गया, अब मुझे ये एक लाभ उठाना है, एक महान लाभ, अब मुझे ये सेवा के बजे में यही लाभ दी है, ये एक महान अपराध है। हमें हरिनाम जप के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। माधव पूरी की कथा जानते हो, माधव पूरी विश्राम कर रहे थे गुरुदेवपुर में, जब विश्राम कर रहे थे एक बहुत सुंदर ग्वाला वहां पहुंच गया, मटके में दूध दे, और ग्वाला ने कहा हे सर महात्मा, तुम मुझे भूखे नजर आते हो, ये दूध पी लो, मैं लौटता हूं ग्वाला लोटा ले गए। माधव पूरी ने इतना कठिन ग्वाला कभी नहीं देखा था, और मंदिर पूरे आश्चर्य हो गए उनके चेहरे में देखा। मंदिर पूरी ने पूछा आपको कैसे पता कि मैं भूखा था, तो उन्होंने कहा कि औरतें जा रही थी कुएं से दूध लाने के पानी लाने के लिए, आपको देखकर अंदाजा लगा लिया कि यार। फिर मंदिर पूरी को सपना आया, सपने में वो भी कुआला जिसे दूध लाया, जो दूध लाया था वो माधवपुरी को खींच कर ले गया जज में एक स्थान में, जहां उसने कहा कि यहां मेरी मूर्ति ब्रज की दबी हुई है, छुपी हुई है, मुझे बहुत गर्मी लगी है उठा वैसे। तो माधवपुरी ने ये सपना दूसरों के साथ चर्चा की और सबने कहा चलो चल कर दे। पर माधवपुरी में जब पता लगा कि वो ग्वाला जो था स्वयं भगवान थे, तो एकदम शर्मिंदा हो गए, क्यों, मैंने भगवान से सेवा ले ली, सबसे उत्तम स्थान है जब भगवान की सेवा करते हैं। पर हमें प्रयास करना चाहिए इस चेतना के साथ सेवा में जरूरी, तो हरिनाम जो है ये है संपत्ति, यही है असली धर्म। तो जितने ध्यान से हरिनाम का जाप करेंगे उतनी तेजी के साथ जिंदगी में शुरू होगी। तो हमें हरिनाम के जाप के बल पर प्राप्ति करना चाहिए, ये मत सोचना अब मैंने दीक्षा ले ली है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, कहीं ने आशीर्वाद दी, अगर हम अपराध करें तो गुरु को माफ कर दे, ऐसे हमें इस अपराध से बचना चाहिए। अपन जी दीक्षा समारोह में कह रहे थे इस लॉजो वेरी वेरी सीरियस ऑफर। तो आगे आठवां नाम का है ये सोचना कि कहना मैं जाप है कर्मकर्ण कार्य के समान है। कर्मकर्ण कार्य आप जानते हो ये एक प्रकार का व्यापार होता है भगवान के साथ, हम ये करेंगे तो इसके बदले में मुझे ये चाहिए, तो ये कर्म का नहीं है। हरिनाम के उच्चारण से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, सेवा दो सेवा दो सेवा दो। सब पुरुष ब्राह्मण दे रहे हैं, उन सबके प्लेट में जिलू होना चाहिए, यज्ञ से पहले। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ पुरुषों के प्रेम में, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यह हरिनाम के जाप है किसी प्रकार का कर्मकंड कार्य है। कर्मकंड कार्य जो है एक प्रकार का सौदा होता है भगवान के साथ। हम ये कहेंगे इसके बदले में हमें ये लाभ चाहिए। सूरतुल्लाह ठाकुर कहते हैं कि अगर आप जहर को सोने के प्याले में डालोगे क्या परिणाम होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कर्म कर कार्य में हमारी रुचि नहीं है, इसलिए व्यास ने भी सारे शासन की रचना करने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं थे, तो फिर उन्होंने श्रीमान भगवत की रचना की। तो हम हमारी रुचि कर्मकंड नहीं है, लेकिन कर्मकंड एक प्रकार का भौतिक व्यापार है और इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा आप ऊपर के लोगों तक जा सकते हो, गंगा धाम पहुंचे जा सकते हो। गंगा धाम में प्रवेश करके इंद्र को बिल्कुल शुद्ध बना देना चाहिए। तो आगे अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। तो एक चरण से चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, जाने का बताए कि हम पिछड़ोगे, जिसे देखो उसे मिलो, क्या उपदेश। तो ये भाव होना चाहिए कि हम कृष्ण का उपदेश चैतन्य और आप प्रयास करोगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे, और प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा, मैं सिर्फ में नहीं लड़ सकता। भगवान ने कहा मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए क्या करो, इसमें लड़ो। तो हमें किसी हालत में ये नहीं सोच सकते ये कार्य असंभव है, हर कार्य भक्ति योग में सब असम संभव हो सकता है अगर श्रद्धा से नियमों का। तो किसी हालत में भी हमें हरि नाम के जप के बल पर पाप करना है नहीं करना
नहीं।
आगे आठवा नौ प्रार्थना, ये सोचना कि हरि नाम की अगर गुणगान की महिमा है ये किसकी कल्पना है, ये सोचना कि हरि नाम ये इतनी शक्ति नहीं है, ये सोचना कि किसी प्रकार का कर्म करना कार्य है एक महान अपराध है। हरि नाम एक पुकार है परम भगवान के लिए, जिस पर एक बच्चा रोता है माँ के लिए और किस भाव में बच्चे का कि हमें सेवा दीजिए सेवा दीजिए सेवा दीजिए। तो हमारी कर्म कर्म में कोई रुचि नहीं। आगे कहा गया अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देना। तो एक तरह से तो हमारे सामने चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है क्या सारे तत्वदायक और कृष्णा, दूसरी तरह से कहा जा रहा है अश्रद्धालु लोगों को प्रचार देखना। तो विचार किए हैं प्रचार हरेक से कर सकते हो, ज्यादा संगत उनकी रखना जिन्होंने शरण लिए हैं शिक्षा और जो इस शिक्षा का लाभ उठाएंगे वो ध्यान जा सकेंगे भगवान के ध्यान में जा सकेंगे। तो हमें नवा नवा अपराध है कि अश्रद्धालु को भगवान की महिमा का उपदेश देना। अगर आपको कोई रास्ते में व्यक्ति मिलता है और फिर ना पूछे अपना बता सकते, पर लोग पूछे अब मेरे का आपके घर का फोन नंबर क्या है, घर का फोन नंबर क्या है, आप तो इतनी घबरा जाओगे। तब सबको हरिनाम हरे कृष्ण बोल सकते हो, परिणाम मेरे गहरा अर्थ है वो उपदेश दीजिएगा जब दूसरे व्यक्ति में इष्टता हो जाए हरिनाम के। तो हरिनाम एक साधन है भगवत प्राप्ति के लिए, हरिनाम 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 ये वो केवल केवल। तो आगे दसवां नाम अपराध है, दसवां नाम अपराध है बहुत हरि नाम दीक्षा देने के पश्चात ही भौतिक आकर्षण बनाए रखें। भौतिक आकर्षण जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन का शत्रु है और हम भौतिक संसार में क्यों भटक रहे हैं, भौतिक आकर्षण के शत्रु। तो ये जो हाइना हम स्वीकार कर रहे हैं, जो शास्त्र अध्ययन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये सब एक कार्यक्रम एक कार्यक्रम ये सब आवश्यक है बौद्धिक आकर्षण पर तोड़ने के लिए। इसलिए हमें पहला शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। बाबा जी ने हमें लगभग 100 ग्रंथ दिए हैं और हम सबको इन ग्रंथों का अध्ययन करना है। अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, साधना भक्ति रखेंगे, ध्यान पूर्वक जाप करेंगे, तो फिर क्या लाभ होगा? बिना शंका के अगर भौतिक आकर्षण तुम जोर देगा। ये जो 10वां नाम अपराध है, इसके दो अर्थ हैं। दूसरा अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह है कि ध्यान पूर्वक जाप देखना। भगवान के नामों में भगवान में कोई अंतर है या नहीं है? नहीं है। तो अब जब आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठते हो तो ध्यान पूर्वक बैठते हो या उसके साथ बैठे हो और फोन में बात कर रहे हो? हाँ, क्या करते हो? जब आप जो पार्टी किया हो और प्रसाद खा रहे हो तो कोई आ जाए बार बार टोकर ताकि करने के लिए पड़ती है, आप जवाब दोगे? आप बोलोगे शांति से खाने दो बाद में आना। तो इसी प्रकार जब आप 16 माला का जाप करने बैठते हो, ये नियम बनाओ, शांति से जाप करने दो, बाकी सब कार्य बात। और जितने ध्यान जाप करोगे उतनी तेजी के साथ चेतन से परमात्मा हृदय की मैल दूर होगी। तो जो भाई शिक्षा ले रहे हैं उन्हें 10 नंबर पालन भी बचना है, साथ में वैदिक भक्ति का भी पालन करना है। वैदिक भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन। शास्त्र में नियम दिए गए हैं इसलिए हमारे उद्धार के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय भावना से भावना में सारे विश्व में उपदेश दे रहा है, क्योंकि उपदेश है आनंद समाज के उद्धार के लिए। तो आप सब बीमारी का अनुभव कर रहे हो, माला के जाप के अलावा आप सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। वैसे भक्तों से निवेदन किया जाता है जल्दी 4 बजे तक पूजा है करो, मंगल आरती करो मंदिर मंदिर में घर में। मंगल आरती के अलावा ये जो संसद प्रार्थना है इसका भी उच्चारण करो, साथ में शास्त्र भी पढ़ो। हम भक्तों में एक बड़ी कमी है, वो कमी ये है कि हम जितना हमें पढ़ना चाहें उतना शास्त्र को नहीं पढ़ते। आप जो पढ़ना चाहते हो उन्हें शास्त्र को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना नहीं चाहते वो किसी और से कह सकते हैं मुझे सुनाओ। तो आप सब जो हरिना दीक्षा ले रहे हो, आप सबको थोड़ी देर में माला दी जाएगी आपके आध्यात्मिक नाम के साथ। आपके आध्यात्मिक नाम के साथ क्या जोड़ते हैं? दास और मतलब आप सेवक को नौकर बन रहे हो। दीक्षा का मतलब ये नहीं कि हम भक्ति से जूझ जाएंगे, भक्ति में और गहराई से जुड़े। साथ में जो दीक्षा ले चुकी थे दीक्षा ले रहे हैं उन्हें पीने से बोलना चाहे मंदिर के साथ जुड़ना चाहे, हर रविवार को बिना शंका के भक्तों के संग में आना चाहिए और इन दिव्य शिक्षा प्राप्त करके ढंग के आना माना। तो आप सब जो दीक्षा ले रहे हैं सब बड़े गंभीरता के साथ नियमों का पालन कीजिएगा। आपका सौभाग्य है कि आप भक्ति में जुड़े हो, तो ये भक्ति का बीज उगेगा तब जब आप इसे पानी पिलाओगे। पानी पिलाना का अर्थ है श्रमण के श्रम के माने। तो आप सब के पगे के माला का जाप रोज करना। आप सब जब देख लेना क्या कि माला में एक बार मूर्ति रहे, हमने प्रयास किया है कि पर कभी कभी क्यों माला बना दे गलती कर देते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए एक बार मूर्ति होने चाहिए। और आप सब मंदिर भी अपनी मंदिर करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने द्वारा देश दिया था भक्तों को घर घर जाकर प्रचार करेंगे। कहाँ समय और प्रचार का अवसर हो जाते हैं, जैसे मैं कल कह रहा था या परसों अगले मॉरिशस में खास करके हिंदू बड़े मित्रता से आपको लेते हैं, तो प्रचार के नाम भोज को और हमें हरि नाम को स्वीकार करते हैं और के साथ हरि नाम के माध्यम से भगवान के नाम और शास्त्र धारिया है। हमारा प्रदेश क्या है, मन मना भाव मन भक्त मदर जी मत और पति जी। आज के इस प्रोग्राम में अनेक भक्त नाम दीक्षा के ग्रहण करते हैं। इस संस्था में इस समय बहुत बल दिया जा रहा है शास्त्रों के अध्ययन में और विश्व के कई स्थान हैं जहाँ के जो पढ़े लिखे भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है केवल भक्ति शास्त्र के कोर्स करने के बाद। पर आपके यहाँ ये नियम का पालन हम कर किसी नहीं कर रहे, हालांकि कई जो ब्राह्मण दीक्षा देने हैं परेशानी भी हैं। तो शास्त्र में कहा गया है समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्णा चार आश्रमों में, चार वर्णा चार आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वर्ण व्यवस्था और चार क्या
ब्राह्मण।
तो ब्राह्मण का समाज में होना आवश्यक है। एक समय किसी ने प्रभारी से पूछा, स्वामी जी आप चमत्कार दिखा सकते हो क्योंकि अक्सर कोई साधु हो हम ये उम्मीद करते हैं कोई चमत्कार दिखाएगा, हाथ देखेगा उस दिन में है और मैं सिद्धि भी आ रहा था आपके बड़े से प्रेम पकड़ के एक और आगे बैठी थी आगे मेरे पास बैठे थे स्वामी जी हाथ भी देखते हैं हाथ देखते हैं तो आपको बस मैंने कहा इसके खुशी से क्या करना चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि स्वामी कोई चमत्कार भी कर सकेगा, तो किसी ने पापा जी से पूछा स्वामी जी आप कोई चमत्कार कर सकते हो, स्वामी जी ने कहा स्वामी जी ने कहा नहीं मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, पर एक चमत्कार मैंने किया है। उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई, क्या चमत्कार देखा, मैंने हजारों वृक्षों को ब्राह्मण बना दिया। वृक्षों से कहते हैं जो कि पाप के कार्य में जुड़ा है, तो प्रभुपाद जी ने हजारों क्या हजारों वृक्षों को ब्राह्मण बना दिया है। तो इस काल संस्था में ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जब कोई परीक्षा ले ज्ञान की भक्ति शास्त्र पास करे, अगर कोई बुजुर्ग हो या अनपढ़ हो तो अलग बात है, पर अगर किसी में योग्यता है हम सब ये आवश्यक कहते हैं कि आप भक्ति शास्त्र करें। तो ब्राह्मण व्यक्ति बनता है गुरु के आधार पर और आपके इस प्रोग्राम में कई जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं कई साधनों से शिक्षित हैं और सबकी इच्छा है क्योंकि लालकों के नजर और कृष्ण बाल आपके सेवा में जुड़े। तो ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए, व्यक्ति ब्राह्मण बनता के ये मतलब नहीं क्या करें जिनको पहन लो तो करें, हमारे में ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। ब्राह्मण के गुणों के विषय में भगवान कहते हैं सबो तमो तपो शांति राजा में बचा ज्ञान में ज्ञानम हस्त कर्म ब्रह्म कर्म। ब्राह्मण को हमेशा शांत रहना चाहिए, पीसफुल ब्राह्मण शुड बी पीसफुल। यदि आपने ब्राह्मण दीक्षा ले ली और सारा दिन लोगों को श्राप के बजा रहे ब्राह्मण जो है उसे हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, ये नहीं कि अगर कोई इच्छा पूरी भी हो काम शांत रहे तो ब्राह्मण में पीसफुल क्यों सोचे। फिर नमो मन रणनीतियों पर वश होना चाहिए, यू द कंट्रोल और माइंड इंटेलिजेंस। तो भक्ति जो एक साधन है जिसके द्वारा आप मन और इंद्रियों को वश में ला सकते हैं। भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा आप भगवत प्रेम अनुभव कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों ब्राह्मण में दबो शब्द कंट्रोल होना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण बन गए और कर्म आप सुनना का कार्य आप ब्राह्मण बन गए तो कर्म आप माया में गए। तो इसलिए ब्राह्मण
शिक्षा जो है
बड़े ध्यान से दी जाती है ली जाती है। तो ब्राह्मण का मन इंद्रिय पर स्पर्श होना चाहिए सब कंट्रोल ये संभव है अगर आप अच्छी तरह साधना करते हैं। तपो ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ ब्राह्मण। तपस्या परम ज्योति भगवत अधोकृतम हर भगवान जो अधोकृत है उन्हें आप प्राप्त कर सकते हो किसे तपस्या के माध्यम से। और भगवान ऋषि कहते हैं तपो जी मुख्य सत्व आप तपस्या कर रहे हो किसके लिए भगवान की सेवा के। तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा अनिर्णय सुख केवल पड़ते जाएगा। तो आप मैंने कहते थे भौतिक सागर की लहरों की सीमा है तो भक्ति के सागर की लहरों की सीमा है नहीं। तो ब्राह्मण मन भी सब कंट्रोल तपस्या की शिक्षा ब्राह्मण को प्राप्त करना चाहिए। सोचम सोचम भी प्योरिटी पवित्रता प्रभा जी ने हमें ये स्लोगन दिया था प्योरिटी इज अ फोर्स अस्ति शक्ति जो हमें चाहिए प्रचार के वो है पवित्रता का भाव। और अगर पवित्रता का भाव रहेगा तो वह भगवान की सेवा में और की राय से जुड़ सकते। प्रभा जी ने हमें क्या मंत्र दिया था फूलों के धर्म मंत्र नीचे गिरती सब प्रचार की सेवा में प्रचार की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। आगे क्या कहा प्रचार का माध्यम क्या है ग्रंथों का वितरण। उस दिन मुझे कुछ दिन पहले कई माता जी मेरी थी जिन्होंने कहा या मुझसे कुछ मैं कहते था तो इंपोर्टेंट ग्रंथों की सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हमारे पास के लिए। और जितने ध्यान से आप करोगे तो धीरे धीरे से इसका प्रभाव तो यहाँ कहा जा रहा है पवित्रता प्योरिटी इज अ फोर्स प्योरिटी मीन्स फॉलोइंग रेगुलेशन फॉर प्योरिफिकेशन। और जितनी पवित्रता से आप करेंगे माता पिता इतना ही अधिक उसे लाभ होंगे। फिर ब्राह्मण का जो मन है वो शांत रहना चाहिए। इन्हें आप ब्राह्मण बन गए और आप सारा किस्से में रहते हैं सबसे झगड़ा करने को तैयार हो प्रेमी हो जाते हैं फैमिली में पहला करने को तैयार हो। ब्राह्मण को अत्यंत सहनशील होना चाहिए प्रतिक्षा और बिना शंका के आगे बढ़ सकते। फिर यह ब्राह्मण को सहनशील होना है आगे पॉलिश और ब्राह्मण में सच्चाई की भावना में अगर हमारे ब्राह्मण में स्वच्छता नहीं हो तो ब्राह्मण को कौन उसका पालन करेगा। भगवान राम जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपने सारे गहने अर्पण कर दिए थे किसे किसे ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने गहने लिए और फिर क्या क्या ऑफर कर ये था ब्राह्मण का उपहार। तो जो ब्राह्मण है वो शास्त्र के आधार पर जीवन बिता है और उसमें सहनशील बल होता है। सहनशील बल बड़ा आवश्यक है अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। सिद्धार्थ हो और चेतन महाप्रभु ने क्या कहा है इसमें लाल पृथ्वी चेना हमारे समाधान में अगर आप सदा हरि का नाम लेना चाहते हो तो ये विनम्रता के भाव से हमें भगवान को और इस भाव से हमको तो बिना शंका के क्या भगवान की कृपा पाएगा। तो ब्राह्मण जो है उसे सहनशील होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि नादपि सर्वपि भगवान कपिला देव ने संतों के गुणों का वर्णन करते हुए क्या कहा कि दीक्षा भी कहा सुदर्शन होते तो जो ब्राह्मण है उसे अत्यंत सेंसिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण को अगर कुछ कठोर शब्द कह दो तो अपमान महसूस करेगा। ब्राह्मण जो है अत्यंत सेंसिटिव होता है। फिर ज्ञानम और विज्ञानम, जैसे मैंने कहा कुछ समय पहले ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जब किसी ने पक्की शास्त्री पाठ किया। क्या भाव, क्या भाव यह है कि जो ब्राह्मण बनेंगे और असली ब्राह्मण बने समाज में, धोखी ब्राह्मण नहीं, नाम के ब्राह्मण नहीं। तो जितने ध्यान से करोगे उतनी चीज मैं तो ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए, तपस्या का भाव होना चाहिए, ज्ञान तो कहना हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए आप अपनों की परिश्रमिक दी जाती है लिखित रूप से ब्राह्मण दीक्षा चाहते हैं। ये देखेंगे कि लिखित रूप में कितनी अच्छी तरह हमें शास्त्र समझ आता है। शास्त्र को जितने ध्यान से पढ़ोगे उतने ध्यान से आप भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। तो आज के इस शिक्षा प्रोग्राम में कई भक्त शिक्षा ले रहे हैं, कई हरिराम ले रहे हैं, कई मंत्र ले रहे हैं। एक निवेदन है, दीक्षा लेने के बाद ये मत सोचना अब मैंने दीक्षा ले ली अब मुझे किसी की कृपा नहीं दे, अब डाले नाम ले लिया अब मैं किसी की शामिल नहीं करूँ, अब तो सब दीक्षा। दीक्षा हरिना दीक्षा प्रॉपरली टू से ओनली द बिगनिंग, ये मत सोचिए हरिना दीक्षा ले लिए तो भगवत प्रेम वैकुंठ धाम का लाइसेंस मिल गया। अब वैकुंठ धाम का लाइसेंस जब मिलेगा जब आप ध्यान से नियमों का पालन करके महाराज का जाप करके शास्त्र अध्ययन करके और सेवा भाव प्रस्तुत करोगे, जब इन भावना से करोगे तो फिर आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। और भौतिक समाज में हर कदम पर खतरा है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता अंतिम कदम कब हो, तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। कुछ कोई व्यक्ति नहीं कह सकता अंत कब आएगा, हमें ध्यान से रहना। ये नहीं कि हम भक्त बन गए हैं, राम दीक्षित हो गए हैं, तभी सब कुछ होगा, मन से पूछ कर होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हर कदम पर खतरा है ध्यान को, और हम अगर ध्यान पूर्वक रहेंगे तो ये अपने आप को माया के प्रभाव से बचा सकेंगे। तो आप सब जो दीक्षा ले रहे हो हरिनाम जाप ध्यान पूर्वक कीजिएगा, और आपके स्थानों में जो भक्ति वृक्ष नाम होता है उसे भी जुड़ेगा। और किसी न किसी रूप से हमारा प्रयास क्या मदद है कि हम भक्ति में आगे बढ़े। भक्ति में आगे बढ़ने का क्या लक्षण है, बिगिनिंग अट्रैक्टिव द होली डे, हरि नाम के प्रति हमारा आकर्षण पड़ा है, शास्त्र के अध्ययन के प्रति आकर्षण पड़ता है, और सेवा भाव बढ़ रहा है, विनम्रता का भाव प्रकट हो रहा है। जब तीन प्रसंग के भाव प्रकट हो गए जब हम हरि नाम का पूरा लाभ और हरि नाम का लाभ जब हमने कहा हर स्थिति में है, अगर आप ध्यान से शास्त्र भी पढ़ोगे, शास्त्र को भी पढ़ोगे तो आप देखोगे उनके ध्यान में बोली की चीज ये मिल जाए। और आप सब का भाव ये रहता है कि आप भक्ति के पास में आगे बढ़ो। कदम कदम पर खतरा है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता अभी कब आएगा, और जिस व्यक्ति ने सेवा में जुड़ा है वही है आगे सभी व्यक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रबंध भूमि निकल भगवान रखी गुरु के कृपा भक्ति रखी अनेक मिलने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है, जिससे क्या मिलता है भक्ति का बीज। भक्ति का बीज उगेगा कैसे, जब क्या करोगे और जो भक्त आज ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं जैसे मैंने कहा था अपना तीसरा जन्म ग्रहण कर रहे हैं। विद्यार्थी मंत्र को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। इन्हें की ब्राह्मण दीक्षा दे दी, ब्राह्मण बन गए, अब विद्यार्थी मंत्र में जब देना है देंगे। नहीं, से दिन में ये पाठ देना है और जितने ध्यान से आप इन चीजों को अनुकूल करोगे उन्हीं देवी के साथ ही माया का जो प्रभाव है। प्रभा जी की इच्छा थी कि इस संस्था द्वारा जैन ब्राह्मण हम इस संस्था द्वारा क्या बनाए, असली ब्राह्मण ब्रह्म के ब्राह्मण नहीं। तो आप सब जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हो नाम के ब्राह्मण मन बनना, असली ब्राह्मण बनना। असली ब्राह्मण बनना का मतलब है नियमों का पालन करना, संतों को आदर देना, सेवा भाव बना जुड़ना। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्राह्मण जी ने एक ऐसी संस्था बनाई है जिसमें सारे विश्व की प्रजा बैठ सकती है और हम सबका भाव क्या होना चाहिए, मित्रता का भाव भक्तों ने बोला। मित्रता का भाव है कहते सब भक्तों के गुणों को देखो, और सबके गुणों को तो देखोगे तो सबके प्रति आपके जो भाव है वो करते रहे। तो मेरी उम्मीद है आप सब जो आज ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हो उनको भीतर से जिम्मेदारी को स्वीकार करोगे और जितने ध्यान से वही राम करोगे उतनी तेजी के साथ भी आपका ध्यान भी परिवर्तन होगा। उतनी तेजी के साथ आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकोगे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आप सबसे निवेदन है कि दीर्घ होकर सेवा कीजिए। तो जो जिन भक्तों में पढ़ने की योग्यता है जरूर पढ़ना चाहिए बिना शक करके। जब आप पढ़ते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है, मुझे अभी उसे बुद्धि दे दे दो, कम चुके अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कम चुके। तो ये है भगवान की इच्छा। तो मेरी एक उम्मीद है आप सब जो याद इच्छा ले रहे हो चाहे हरिग्राम हो या ग्राम हो भीतर से अपनी जिम्मेदारी को उठाओगे और असली ब्राह्मण बनोगे, असली भक्त बनोगे जिसके द्वारा अपनी को बात कर सकते हो। हरे कृष्ण। तो अभी जैसे आप जानते हो हरिनाम जैसे आप जानते हो लेक्चर के बाद क्या प्रोग्राम होता है, हरि नाम जो दीक्षा ले रहे उनको क्या दिया जाता है। नाम है ये संबंधित होते हैं प्रभु ये नाम है ये भगवान और के भक्तों के नाम है। नाम के साथ क्या जोड़ा जाता है, दास और
दासी।
कई बार हमें लोग कहते हैं आपकी मत के किसी दास जो हमें सचमुच दास बनना चाहिए, सचमुच दास ही बनना चाहिए। ये नहीं कि नाम समय दास है हम सदा यही होते हैं, हमने तो हुक्म चलाना है। अध्यात्म जीवन में होशों में एक बार होता है सेवा भाव का। तो जो नाम को दिए जाते हैं तब भगवान के भक्तों से संबंधित है। नाम क्या के दास और दासी आ गया और आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनका उत्तर देना। पहले हम पुरुष को बुलाएंगे तो फिर आपसे देखो अपराध दीक्षा के काफी भक्त हैं तो आज हम ब्राह्मण दीक्षा लेंगे यहाँ जो काम के भक्त हैं। तो जो भक्त तीर्थ मंदिर हैं उन्हें क्या भी मंत्र का सुबह दुर्गा होती है भक्त आदमी पहले कैसा मंत्र पहले हम पुरुष के नाम को कहेंगे और फिर स्त्रियों के नाम करोगे। भाषाओं पर स्पेशल माना भी दी जा रही है कि जो माना है वो खास बनाते हैं भाषा आदि नियम अनुप और तीन नियम रखा है। पहले गोवर ऑफर की पर जन चल पहले आपका जो किसान उठाने जा रहे हैं तीन दिन में आप एक कर सकता हूँ। आप लोग कह रहे हैं प्रदान करना फिर गुरु की बात शासन की जिम्मेदारियों को समझ गए हो जो है नाम शिक्षा ले रहे हैं अब समझे हुए नहीं नहीं होते तो मैं हरिनाम माना नहीं देना चाहता पालन जरूरी है सब नियमों का जो नाम शिक्षा ले रहे हैं पहले तो उसका वचन दे रहे हैं बाद में कभी भी मुंह पर जाते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि परम भगवान हर चीज के साथ के
Hace programa provocado aquí en Pinasco. Pinasco.